ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहे इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहे इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन जमी आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी परदा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ तेरा क्या काम है। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहां। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहां। सबके भगवान अपने ही अपने जहां, ना समझ तुझको समझे ना लड़ते यहाँ। तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान तू बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ तेरा क्या काम है।
ओम शांति। हमारे बीच आदरणीय उषा दीदी जी उपस्थित हैं परम सत्ता की पहचान इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए। सभी जोरदार करतल ध्वनि से हम दीदी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। 1961 में साउथ अफ्रीका जैम्बिया में आपका जन्म हुआ और 1974 में आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए। 76 में जैम्बिया से पूरा ही परिवार भारत में शिफ्ट हुआ। 1980 में आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। दीदी तो मना कर रहे थे लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी खुशखबरी, आज के ही दिन 1980 में दीदी समर्पित हुए ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वरीय सेवाओं के लिए। तो सभी खड़े हो जाए अपने स्थान पर और करतल ध्वनि से देखो दीदी कितना अच्छा सेवा कर रहे हैं, आप जानते ही हैं। हाँ बैठ जाइए, बहुत अच्छा। तो 1985 में पद यात्रा में भी आपने बहुत सेवाएं दी और सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप में आप तो है ही प्रवीण। बहुत सारे कंपनीज में आपने सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप कोर्सेस करवाए हैं और आपने दो किताबें भी लिखी हैं। देश विदेश में जाकर आपने ईश्वरीय संदेश पहुँचाया। हॉल ऑफ फेम अवार्ड पीआर काउंसिल ऑफ इंडिया से आपको मिला। अनेक अन्य अवार्ड्स भी आपको मिले हैं। तो इस तरह से मॉरल अवार्ड भी मिला थाईलैंड में। दीदी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे फिर से। हम आज खुद खुदा ने जो अपना परिचय दिया है वो हम दीदी के मुखारविंद से सुनेंगे। परमात्मा का दिव्य ज्ञान, खुदा का ज्ञान स्वयं खुदा ने दिया, वो हम आदरणीय उषा दीदी के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करेंगे। मैं दीदी के लिए कहना चाहूँगी, सीप को मोती मिले तो और क्या चाहिए, और उषा दीदी के द्वारा परमात्मा का परिचय मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो दीदी के द्वारा हम सुनेंगे परम सत्ता की पहचान इस विषय पर। और जो भी बच्चे यहाँ बैठे हैं कृपया कॉन्फ्रेंस हॉल में जाएंगे, आपका क्लास वहाँ पर है, और जिन्होंने सौगात नहीं ली है शिविर में आए हैं वो कल क्लास के बाद लेंगे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। राजयोग शिविर के अंतर्गत आप सभी ने आज सवेरे आत्मा का यथार्थ परिचय प्राप्त किया, साथ ही राजयोग का अभ्यास आप सब में कुछ लोग तो कई समय से कर भी रहे हैं, और इसीलिए बाबा के इस बेहद घर में आप सभी पधारे हैं एक अनुभव प्राप्त करने के लिए, और श्रेष्ठ अनुभव आपको प्राप्त हो उसकी आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं, बधाई देते हैं। परमात्मा का यथार्थ परिचय, क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति किसी गांव में चला जाए, गांव वाले उसके फीचर्स को देखकर अंदाज लगाते हैं, हो सकता है ये यहां से आया होगा, इसी प्रांत का लग रहा है, बोली में ये भाव झलक रहे हैं, तो अंदाजा लगाते हैं। परंतु जब तक वो खुद अपना परिचय नहीं देता है तब तक उसके विषय में कोई भी यथार्थ जान नहीं पाता है। ठीक इसी तरह ईश्वर के बारे में भी हम सभी ने बहुत सारे अंदाजे लगाए, और इसलिए शायद आज दुनिया के अंदर ईश्वर को लेकर के अनेक मत मतांतर हो गए। इतनी सारी मतें हो गई कि आखिर सत्य क्या है, वो सत्य कहां लुप्त हो गया पता ही नहीं चल रहा है, और इसलिए मनुष्य आज के समय में कंफ्यूज्ड है कि आखिर भी परमात्मा कौन है, किसको परमात्मा माने। इसलिए हमारे मंदिरों में सारे देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता है, महादेव जी को भी रखा जाता है, क्योंकि पता ही नहीं कि इन सब में कौन है। तो सबके आगे जाकर मनुष्य यही कहते, आप सब में जो सही हो मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए, यही होगा ना, क्योंकि ईश्वर एक है और वह सत्य है, और सत्य दस नहीं होता है, सत्य एक ही होता है। तो ईश्वर अगर सत्य हो तो सत्य तो एक ही होना चाहिए। एक बार एक बहन मेरे सामने आकर कहने लगी कि उसका बेटा 15 साल का है, 14-15 साल का है, और वो अपनी माँ से पूछता है कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों हैं, क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड क्यों है। वो माँ उस बच्चे को समझाने का प्रयत्न करती है कि हिंदू धर्म में ये सारे भगवान हैं। वो बच्चा कहता है ये सारे भगवान कैसे हो सकते, भगवान तो एक होना चाहिए, और अगर ये सारे भगवान है तो इन सब का हेड कौन है। परिवार में भी एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो भगवानों में ये सबका हेड कौन है। वो माँ उस बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती है, और इसलिए जब भी वो माँ अपने बच्चे से कहती है बेटा मंदिर चलो, वो बच्चा मना कर देता है कि मंदिर जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मन तो लगता नहीं है। इसी कंफ्यूजन में रहता हूं कि आखिर इसमें से सत्य क्या है। यह उस मां का प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझती हूं आज भारत में ऐसी कई माएं होंगी जिनके बच्चे भी ये सवाल पूछते हैं और उनके पास भी जवाब नहीं होता है। तो इसलिए कहा, आखिर सत्य क्या है, किसको सत्य माने। एक बार हमने एक कार्टून देखा जिसमें एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम आती है हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था नेचर इज गॉड, प्रकृति परमेश्वर है। दूसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है। तीसरी कॉलम में लिखा था आत्मा सो परमात्मा हम ब्रह्मास्मि। चौथी कॉलम में लिखा था वो कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सर्वव्यापी है, जहां देखो वहां तू ही तू है। पांचवी कॉलम में लिखा था वो निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है। छठी कॉलम में लिखा था जितने भी इष्ट देवी देवताएं सब परमात्मा के रूप है, विभिन्न समय पर विभिन्न अवतार धारण करके आए। और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था भगवान जैसा कुछ है ही नहीं। अगर सचमुच भगवान हो तो क्या सिद्ध करके बता सकते हो। अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, ये सारी मते पढ़ने के बाद उसने क्या निश्चय लिया होगा कि आखिर भी सत्य क्या है। और इसलिए दिनों दिन नास्तिकवाद दुनिया के अंदर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोई भी इस हालत में नहीं है जो सत्य बता सके हमें। क्योंकि ये सारी मते भी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। क्या प्रकृति को परमात्मा कहे या आत्मा को कहे, ब्रह्म को ईश्वर कहे या कण कण में व्यापक है कहे, निराकार को कहे साकार को कहे या है ही नहीं कहे। तो सारी मते भी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। आखिर सत्य क्या होगा, कोई कसौटी तो हो जिस पर हम कस कर देखे। जैसे एक जवेरी होता है उसके पास एक कसौटी होती है जिस पर वो कस कर देखता है सोना कितना कैरेट का है और फिर उसकी कीमत का निर्णय देता है। ठीक इसी तरह ईश्वर किसको कहा जाए, उसको परखने की कोई कसौटी। कल को हमारे सामने कोई व्यक्ति आकर कहे भाई मैं ही ईश्वर हूं, आप मेरी पूजा करो, तो क्या हम करने लग जाएंगे। सत्य न होने मालूम न होने के कारण ही आज मनुष्य कई जगह धोखा खा रहा है। कई जगह पर ईश्वर समझ करके जाता है और फिर बाद में पता चलता है तो बहुत बड़ा फ्रॉड था, बहुत बड़ा उसने ये कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया। फिर व्यक्ति का विश्वास ही खत्म हो जाता है। तो आज मैं आपको बताती हूं परमात्मा को परखने की कसौटी, पांच बातें। सबसे पहली बात है ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्वधर्म मान्य हो। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग। गॉड इज वन, वो एक होना चाहिए। आज किसी व्यक्ति को कोई चाचा कहे, मामा कहे, भाई कहे, पिताजी कहे, स्वरूप तो एक ही रहेगा या हर बार बदली हो जाएगा, एक ही रहेगा ना। ठीक इसी तरह कोई ईश्वर को गॉड कहे, अल्लाह कहे, ईश्वर कहे, प्रभु कहे, मालिक कहे, स्वरूप तो एक ही होना चाहिए या बदली हो जाना चाहिए। सर्व धर्म मान्य, जिसको सभी धर्म ईश्वर के रूप में स्वीकार करे, वो है सत्य। दूसरी बात, ईश्वर उसको कहा जाए जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आज ये मनुष्य उसका पिताजी ये है तो उसका पिताजी ये है तो उसका पिताजी ये है, आज ये गुरु है उसका गुरु ये है, उसका गुरु ये है, उसका गुरु ये है, गद्दी चली आ रही है। नहीं, गॉड के ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। अल्टीमेट सुप्रीम अथॉरिटी जिसको कहा जाए उसको कहेंगे परमेश्वर। ना उसका कोई पिता है, ना उसका कोई गुरु है, ना उसका कोई रक्षक है, वो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो, सर्वोच्च शक्ति। तीसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व परे हो, अर्थात मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्र में आते हैं, जन्म और मृत्यु का चक्र। परमात्मा के लिए गीता में भगवान वाच में अजन्मा हूं, अकाल मूरत हूं, जिसको काल कभी नहीं खा सकता है, अकाल मूरत। अब जिसने जन्म लिया उसने देह धारण किया, और देह है तो देह के संबंध है। परमात्मा जब अजन्मा है, जन्म ही नहीं लिया, तो देह भी नहीं है, इसलिए का अव्यक्त, मुझे कोई व्यक्त स्वरूप नहीं है। और जहां व्यक्त स्वरूप ही नहीं है तो कोई देहधारी संबंध भी नहीं है। जब देह धारण किया तो कर्म किया, कर्म किया तो कर्म का फल भी भोगना पड़ता है। इस संसार के अंदर जो भी देहधारी है वो भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि वो अजन्मा नहीं है, वो अकाल मूरत नहीं है, अव्यक्त स्वरूप नहीं है, अकर्ता भोक्ता। गीता में भगवान उवाच में अकर्ता भोक्ता हूं, न मैं कर्म करता हूं, न मैं उसका फल भोगता हूं। और जिसने कर्म किया, या तो वो कर्म पाप कर्म होगा या पुण्य कर्म होगा, तो पाप और पुण्य के चक्र में भी हम मनुष्य आत्माएं आते हैं, परमात्मा इस चक्र से भी ऊपर है। अकर्ता भोगता है तो पाप पुण्य का सवाल ही नहीं आता है। और पाप और पुण्य के फल स्वरूप या सुख मिलता या दुख मिलता, तो सुख दुख के चक्र में भी हम आते हैं, परमात्मा दुख हरता सुख करता, इसलिए उसको हरि कहा गया। हरि माना जो दुख हरने वाला है, वो दुख देने वाला नहीं है। तो जो इन सभी चक्र से ऊपर है, जन्म और मृत्यु का चक्र, देह और देह के संबंधों का चक्र, कर्म और कर्म के फल का चक्र, पाप और पुण्य का चक्र, सुख और दुख का चक्र, इन सभी चक्र से जो परे है उसको कहेंगे परमात्मा। तो जो सभी चक्रों से परे हैं उसको कहेंगे परमेश्वर। चौथी बात, परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है, जिसके पास संसार के आदि मध्यंत का ज्ञान है, जो तीनों लोकों को जानता है, जो त्रिनेत्री है, मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु देने वाले हैं, और जो त्रिमूर्ति है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता, या त्रिदेव जिसको कहा, ये तीन की महिमा भी उसी के साथ लगती है। त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति। और पांचवा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, जिसके लिए कहा गया सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, और स्वयं मां सरस्वती बैठकर ईश्वर की महिमा लिखे, तो भी अपरंपार है जिसकी महिमा, उसको कहेंगे परमेश्वर। ये पांच बातें हैं कसौटी, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वपरि, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत। अब ये पांचों बातें किसके साथ लगती है? एक एक मत को उठाकर देखें। जब हम कहते हैं प्रकृति परमेश्वर है, तो क्या प्रकृति के लिए सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में उसको स्वीकार करेंगे? क्या कहेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे। क्या प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? किसी कवि ने बहुत सुंदर ये गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा, वो चित्रकार कौन है? तो सत्य किसको कहेंगे? प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? क्या कहेंगे? आपके आपका विवेक क्या कहता है? हाँ, प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े। दूसरी बात, जब हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, हम ब्रह्मास्मि, हम ही परमात्मा है, ये कहां तक सत्य है? आज मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा टाइटल उसको जरूर मिलता है। किसी ने पुण्य का काम किया तो कहेंगे पुण्यात्मा है, किसी ने महान कर्म किया तो कहेंगे महात्मा है, किसी ने धर्म का काम किया कहेंगे धर्मात्मा है, किसी ने दिव्य कर्म किया तो कहेंगे देवात्मा है। देवात्मा अनेक है, महात्मा अनेक है, धर्मात्मा अनेक है, पुण्यात्मा अनेक है, पापात्मा अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। परमात्माएं, ये बहुवचन कभी नहीं आता है, परमात्मा सिंगुलर में ही आता है, प्लूरल में आता ही नहीं है। और ये सब भी आत्माएं हैं, परमात्मा कोई नहीं है। पुण्य आत्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहा, महान आत्मा महान परमात्मा भी नहीं कहा, धर्म आत्मा धर्म परमात्मा भी नहीं कहा, देव आत्मा देव परमात्मा भी नहीं कहा। भारत में देव आत्माएं भी कितनी है, 33 कोटि है। ये सब देव आत्माएं हैं, देव परमात्मा कोई नहीं है, परमात्मा तो एक ही है। तो इसलिए एक तरफ तो हम कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा हम ब्रह्मास्मि, दूसरी ओर मनुष्य मंदिर में जाकर क्या कहते, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तुम मात पिता हम बालक तेरे। दोनों माते तो नहीं हो सकते, या तो हम खुद परमात्मा है या हम परमात्मा की संतान है। आपका विवेक क्या कहता है? आत्मा सो परमात्मा कहना ठीक है या आत्मा परमात्मा की संतान है कहना ठीक है? क्या कहेंगे? आत्मा परमात्मा की संतान है कहना ठीक है, राइट? तो आत्मा सो परमात्मा कहना अज्ञान था, प्रकृति को परमेश्वर कहना अज्ञान था, अज्ञानता के कारण कह दिया था। तो ये दोनों बात तो क्लियर हो गई। तीसरी बात, जब हम कहते ब्रह्म ईश्वर है, अब अज्ञानता के कारण दो दो बातें हम करते आए, एक तरफ ब्रह्म ईश्वर है भी कहा, दूसरी ओर कहते पार ब्रह्म परमेश्वर, जो पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्म ही ईश्वर है या ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर है, सत्य क्या है? आपका विवेक क्या कहता है? ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है या ब्रह्म में निवास करने वाला ईश्वर है कहना सत्य है? क्या कहेंगे? ब्रह्म में निवास करने वाला ईश्वर है कहना सत्य है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ब्रह्म है ईश्वर ये कहना अज्ञान था। चौथी बात, जब हम कहते कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सर्वव्यापी है, तेरे में भी ईश्वर मेरे में भी ईश्वर, अब ये कहां तक सत्य है? क्या सचमुच भगवान सर्वव्यापी है? आज अगर किसी को कोई बात पूछते हैं और उसको मालूम नहीं होता है तो क्या कहते, ऊपर वाला जाने, छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में पड़ते, यही कहते हैं ना। कभी गलती से कहा नीचे वाला जाने, ऊपर वाला जाने, ये ऊपर वाला कौन है? ईश्वर सर्वव्यापी माना नीचे वाला हो गया, तो नीचे वाला जाने ऊपर वाला जाने कौन जाने, वो दोनों एक ही है या अलग है? और अगर एक ही है तो आज मनुष्य आत्मा जब कोई गलत काम करता है, किसी का खून करता है, तो यह कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहते? अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है, किसी का खून करता है, तो यह कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? आत्मा का। अगर ये कर्म आत्मा का है तो उस वक्त परमात्मा कहां गया था? सर्वव्यापी उस समय कहां चला गया? आज घर में बच्चे होते हैं और बच्चे किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा करे, मां बाप सामने बैठे हैं तो लड़ने देंगे या छुड़ाएंगे? क्या करेंगे? छुड़ाएंगे ना। एक शारीरिक माता पिता भी अपने बच्चों को आपस में लड़ते हुए नहीं देख सकता है, तुरंत छुड़ाते हैं, वे क्या चाहिए, क्यों लड़ रहे हो? ये तो परमात्मा है जो दया का सागर, करुणा का सागर, प्यार का सागर है। क्या वो देख सकता है इतना मनुष्य लड़ रहा है, झगड़ रहा है, इतना खून खराबा कर, क्या वो देख सकता है? वो रोकता नहीं है क्या? रोकने की ताकत उसमें नहीं है? फिर तो सर्वव्यापी होने की जरूरत नहीं है अगर रोक ही नहीं सकता है तो। श्रीमद् भगवद गीता में जब चौथे अध्याय में उसने वायदा दिया, यदा यदा ही धर्मस्य, अर्थात जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मुझे आना पड़ता है। तो अधर्म बढ़ा क्यों? वो नहीं था इसलिए तो बढ़ा। अगर वो सर्वव्यापी हो तो उसके होते इतना अधर्म कैसे? अगर इतना अधर्म हो गया तो विनाश करने के लिए कौन आएगा, उसको समाप्त करने के लिए कौन आएगा? किसको आना चाहिए? अनेक प्रकार के सवाल आ जाते हैं। उसकी महिमा में गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, जिसका धाम भी इतना ऊंचा है, परम धाम, निर्वाण धाम, वो उसका धाम है जहां से वो अपने वायदे अनुसार अधर्म के समय पर अवतरित होते हैं। वो यहां है तो इतना अधर्म हो ही नहीं सकता है। लेकिन तब मनुष्य कहते हैं कि सर्वव्यापकता की बात भी तो शास्त्रों में ही लिखी है, क्या शास्त्र गलत है? नहीं, शास्त्र गलत नहीं है, लेकिन ये तो हो सकता है कि शास्त्र में जिस भाव से लिखा गया है उस भाव को हमने समझा ही ना हो, ये तो हो सकता है। अच्छा, शास्त्र किसने लिखे? ऋषि मुनियों ने लिखे, और ऋषि मुनियों ने जब ये शास्त्र लिखे तो कहा जाता ऋषि लोग बहुत सिद्ध लोग थे, आने वाले समय को देख सकते थे, और जब वो देखते थे कि इतना घोर अधर्म का युग आ रहा है, कलयुग आ रहा है, अब मनुष्य को पाप कर्म से रोके कैसे, तब उन्होंने ये बात शास्त्र में लिखी कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना कि तुझे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर सर्वव्यापी है, वो तुझे देख रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा जब घुटना करना सीखता है तो घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है, और उस समय माँ को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कहीं रास्ते पर ना निकल जाए, तो माँ क्या करती है, उस बच्चे को दरवाजे तक ले जाती है, बाहर एक कुत्ता या गाय दिखाकर कहेगी देख बाहर गया ना, कुत्ता उठा के ले जाएगा। एक भय बिठाया ताकि बच्चा घर के अंदर खेलता रहे, बाहर न निकल जाए, सुरक्षित रहे। ये नहीं कह सकते माँ ने झूठ क्यों बोला, उसके लिए उसके बच्चे की सुरक्षा प्रथम है, इसलिए ये बात कही। लेकिन वही बच्चा जब 8-9 साल का हो जाता है, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, हंसेगा अपनी माँ पर, मेरी माँ भी कैसी है, इतना भी नहीं समझती है, कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला है क्या, और हंसते हुए निकल जाता है बाहर, कुत्ते के बच्चों के साथ खेलता है, कुत्तों के साथ खेलता भी है, और उसको घर में भी ले आता है, कहे लो मैं ही लेके आया, वो क्या मुझे ले जाएगा, है कि नहीं? समझदार होने के बाद उस बात को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन जब तक बेसमझ था तब तक मां ने जो कहा उसको स्वीकार कर लिया। ठीक इसी तरह ऋषि मुनियों ने जब ये बात शास्त्र में लिखी तो मनुष्य डरता था, पाप करने के लिए भी डरता था। आज से 200-300 साल पूर्व भी लोग पाप करने से डरते थे। कोई अगर किसी को प्रेरणा भी देता था ये पाप कर लो तो क्या कहते, अरे बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, मुझे ये पाप नहीं करना है, ऊपर वाला भी देख रहा है, मना कर देता था। 200-300 साल पहले की बात। तो मनुष्य को पाप कर्म से बचाने के लिए ऋषि मुनियों ने ये बात शास्त्रों में लिखी, क्योंकि शास्त्रों की बात को सतवचन महाराज समझते हैं इसलिए। लेकिन आज विज्ञान के युग में मनुष्य बड़ा हो गया, समझदार हो गया, और इसलिए जब कोई उसको कहता है अरे क्यों इतना पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है, क्या कहता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, ऊपर वाला भी तुझे देख रहा है, तो क्या कहता है, वो देखता क्यों है, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो छुड़ा सकता है, वो छुड़ाए ना मुझे, वो देखता क्यों है। माना उस बात को भी कहां स्वीकार किया, समझदार हो गया। तो शास्त्रों की बात को आज मनुष्य कहां स्वीकार करता है। लोग हमें कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां शास्त्रों को नहीं मानती, अरे आप मानते हो, जो शास्त्रों में ये बात लिखी है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो पाप करना किसी ने छोड़ा या बढ़ा, छोड़ा या बढ़ा, बढ़ा, तो माना शास्त्रों की बात को, माना गुरुओं की बातों को, माना, कहां डर है ईश्वर का। तो लोग हमें कहते हैं ब्रह्मा कुमारी या शास्त्रों, अरे किसने माना है इस जग में ये बताओ, मुझे बताओ कि पाप नहीं कर रहे, ऐसा है कोई इंसान कि शास्त्रों की बात को स्वीकार करके जिसने पाप कभी नहीं किया हो, ऐसा है कोई, है ही नहीं। हम तो फिर भी मानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ये एक भावनात्मक सत्य है, सिद्धांतिक नहीं। हम तो फिर भी मानते हैं। आज आपका बच्चा कहीं विदेश में चला जाए और विदेश से वो फोन करे आपको और पूछे मम्मी आप मुझे याद करती हो, क्या कहेंगे आप, या पापा आप मुझे याद करते हो, तो क्या कहेंगे आप, अरे बेटा भूलते ही कब है तेरे को, तू तो हमारे दिल में बैठा हुआ है, कहेंगे ना। दिल में बैठा है इसका मतलब वो फिजिकली दिल में थोड़ी बैठा है, उसकी याद दिल में समाई हुई है। फिजिकली तो वो विदेश में है। इसी तरह जब मिडिल एज में कुछ भक्त ऐसे हो गए, मीराबाई जैसे, जिनका ईश्वर से इतना घनिष्ठ संबंध था, तब उन्होंने भजनों में गाया अरे जहां देखूं वहां तू ही तू है, क्योंकि उनके मनस पटल पर वो छाया था, तो जहां देखूं वहां तू ही तू है, लेकिन उसका मतलब फिजिकली वो उसके अंदर बैठा है, वो सब जगह है, हाँ ऐसा थोड़ी हो सकता है। भाव को समझना होता है कि ये बातें जो शास्त्रों में लिखी गई है उसका भाव क्या है। भाव को समझा नहीं, फिजिकली सब में ईश्वर को देखना शुरू किया, इसलिए पूजा भी करते रहे, पाप भी करते रहे, भगवान छुड़ाएगा, वो सर्वव्यापी है। तो शास्त्र को किसने माना बताओ, अगर फिजिकली सब में है, ये माइक में भी परमात्मा है, मैं बैठ के इसकी पूजा करूं, ये टेबल में परमात्मा, इसकी बैठ के पूजा करूं, ये सोफा में परमात्मा, इसकी बैठ के पूजा करूं, इससे बड़ा अंधश्रद्धा और क्या हो सकता है। इसलिए कहा ब्रह्मा कुमारियां सत्य बताती है, सर्वव्यापकता की भावना को लेकर चलो जीवन में। आज हमें भी जब कोई कहता है बहन जी आप अकेले हैं, हम कहेंगे नहीं भगवान हमारे साथ है, ये भाव है। इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकली वो सब में प्रेजेंट है और इसलिए हमें खुली छूट है कि हम पाप करें तो भी हमारा माफ हो जाएगा, नहीं माफ होगा। याद रखना कर्मों की गुह्य गति भी साथ में जुड़ी हुई है। तो ईश्वर सर्वव्यापी है, ये एक भावनात्मक सत्य है, सिद्धांतिक नहीं, ये ब्रह्मा कुमारियां कहती है। ठीक है, क्लियर हो गया? किसको है कोई प्रश्न? आगे बढ़े। चौथी बात, पांचवी बात, जब हम कहते निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है, अभी संसार में नाम रूप आकार बिना कोई चीज है? हवा जो दिखाई नहीं देती है। लेकिन अगर एक चित्रकार को चित्र निकालना है और उसको तेज हवा दिखानी है तो दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता है। चक्रवात दिखाना है तो दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता है। चित्र को देखकर कहेंगे बड़ी तेज हवा चल रही है, और शांत प्रकृति दिखाना है तो जैसे हवा चल ही नहीं रही है वो भी दिखा देता है। पूरा प्रतिबिंब तालाब के अंदर दिखाता है तो जैसे हवा चल ही नहीं रही है, एकदम शांत स्थिर है। तो क्या स्वयं परमात्मा नाम रूप आकार बिना हो सकता है? जब उसकी हर रचना को नाम और स्वरूप है, वो खुद कैसे नाम रूप बिना होगा? जिस तरह परमात्मा को कहा जाता है वो निर्गुण है, और निर्गुण का अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो जिसमें कोई गुण ना है, लेकिन वो तो गुणों में अनंत है। तो निर्गुण किस रीति से कहा? कि प्रकृति के तीन गुण जो है, सात्विक राजसिक तामसिक, उन गुणों के प्रभाव से वो परे है। सात्विक राजसिक और तामसिक गुणों के प्रभाव से परे हैं, इसलिए कहा निर्गुण। लेकिन वो गुणों का सागर है, अनंत है। ठीक इसी तरह निराकार माना, जिसकी कोई साकार मनुष्य सदृश आकृति नहीं है, लेकिन उसका अपना स्वरूप तो होगा। वो स्वरूप कौन सा है? जिसकी पूजा भारतवासी ज्योतिर्लिंगम के रूप में करते हैं। ज्योतिर्लिंगम जो ज्योति की आकृति है, जिस तरह मनुष्य का पिता मनुष्य है, पक्षियों का पिता पक्षी है, पशुओं का पिता पशु है, तो आत्मा का पिता परमात्मा, आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति पुंज, प्रकाश पुंज। तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होगा? वो भी ज्योति पुंज, प्रकाश पुंज है, जिसकी पूजा भारतवासियों ने ज्योतिर्लिंगम के रूप में किया है। ज्योतिर्लिंगम माना जो ज्योति की आकृति, लिंग माना आकृति। ज्योति की पूजा कैसे करे, इसलिए एक आकृति दे दी जिस पर मनुष्य अपने भाव को अर्पित कर सकता है। आज इसीलिए भारत भर में द्वादश ज्योतिर्लिंगम है, जो आज भी महान तीर्थ स्थान माने जाते हैं। इसी प्रकार जो मुख्य महादेव के मंदिर है, नॉर्थ में जाओ तो अमरनाथ का मंदिर है, साउथ में जाओ तो रामेश्वर का मंदिर है, ईस्ट में जाओ काशी विश्वनाथ का मंदिर है, वेस्ट में जाओ तो सोमनाथ का मंदिर है, है ना? भारत से बाहर नेपाल जाओ पशुपतिनाथ का मंदिर है। तो इसीलिए कहा कि परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में है। भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर ना हो। बाकी देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई। नॉर्थ में जाएंगे श्री राम श्री कृष्ण की पूजा ज्यादा मिलेगी, साउथ में चले जाओ श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा मिलेगी, तो कलकत्ता चले जाओ काली पूजा दुर्गा पूजा मिलेगी, गुजरात महाराष्ट्र में जाओ गणेश पूजा मिलेगी, तमिलनाडु में जाओ कार्तिकेय की पूजा, गणेश जी के भाई की पूजा मिलेगी मुरुगन के रूप में, राजस्थान में जाओ रामदेवरा जी की पूजा मिलेगी, तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, लेकिन परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में है। भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं है जहां महादेव जी का मंदिर न हो। देवों का भी देव महादेव, इसीलिए कहा कि सभी देवी देवताओं का भी हेड कौन? महादेव। इसीलिए महादेव जी श्री कृष्ण के भी आराध्य रहे, श्री राम के भी आराध्य रहे। जिन देवियों की हम पूजा करते, ये देवियां कौन थी? शिव शक्तियां थी। तो देवों के भी देव, देवियों के भी देव, वो है महादेव। लेकिन यहां भारतवासी एक गलती जरूर कर देते हैं, जो शिव और शंकर को एक ही समझ लेते हैं। अरे जहां नाम अलग है शिव और शंकर, जहां स्वरूप अलग है, एक है निराकार ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष, जहां कर्तव्य अलग है, एक है भोलेनाथ सदा कल्याण करने वाले सदा शिव, और दूसरा है शंकर के लिए कहते तीसरा नेत्र खुला तो महाविनाश प्रलय हो जाता है। तो एक भोलेनाथ कल्याणकारी, एक प्रलयनाथ विनाशकारी। नाम दोनों का अलग, आइडेंटिटी दोनों की अलग, एक निराकार एक साकार, कार्य दोनों के अलग, ऑक्यूपेशन अलग है, फिर एक कैसे हो सकता है? शिव जी को कहते हैं त्रिदेव, शंकर को त्रिदेव नहीं कहा। इसीलिए दिखाते हैं कि शंकर को ध्यान मुद्रा में दिखाया, ध्यान किया। किसका ध्यान करते थे? कैलाश पर्वत पर बैठ के ध्यान किसका किया? कैलाश का। क्यों? अब शंकर को क्या आवश्यकता थी शिव का ध्यान करने की? क्योंकि उसको महत्वपूर्ण कार्य सौंपा था, आंख खोलते महाविनाश होना चाहिए, तो कितनी प्रचंड शक्ति हो तब ये कार्य कर सके। इसीलिए इतने सालों तक उन्होंने ध्यान करके उस ऊर्जा को, उस शक्ति को हासिल किया। किससे? स्रोत से, शिव से। तो जो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, इसीलिए ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और शिव के लिए क्या कहते हैं? शिव परमात्माय नमः। वो देवता है, वो परमात्मा है। ओम नमः शिवाय कहते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शंकराय कभी कहा? क्यों नहीं कहते? अगर एक है तो कहना चाहिए, नहीं कहा। हमारे विवेक ने जिस बात को स्वीकार नहीं किया वो नहीं करते हैं हम। शिवरात्रि भारत में मनाई गई, उसको शंकर रात्रि कहा? एक है तो कहना चाहिए, क्यों नहीं कहा? महाशिवरात्रि, शंकर रात्रि तो नहीं कहते हैं। तो इसीलिए कहा शिव और शंकर दोनों एक नहीं, अलग है। तो श्री कृष्ण के भी आराध्य थे, श्री राम के भी आराध्य थे, शंकर के भी आराध्य थे। तो जो देवियां थे, देवियों के भी आराध्य शिव ही है। इसीलिए उसको देवों का भी देव महादेव कहा। अच्छा, महादेव के जितने भी मंदिर भारत भर में है, उन नाम के नाम भी गुणवाचक है। अमरनाथ, बबुलनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, और उन नामों के पीछे एंडिंग या नाथ या ईश्वर में होगी। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलेनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ या ईश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, सर्व का नाथ और ईश्वर एक ही है। ये तो हुई भारत वालों की बात कि भारत में देवों ने भी उसकी पूजा की, इसीलिए शंकर पूरे परिवार के साथ, मां पार्वती और दोनों बच्चे चारों मिलकर के शिव की पूजा करते, आराधना करते। तो ये तो ही भारत वालों की बात, भारत से बाहर जाए इस्लाम धर्म में जहां मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन मक्का जब हज यात्रा पर जाते तो वहां काबा का पवित्र पत्थर है। और इसीलिए ये मान्यता है कि जब इस्लाम धर्म में भी ईश्वर के नाम पर झगड़े हुए तो एक आकाशवाणी हुई कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इस स्वरूप में याद करो, ऊपर से ये पत्थर गिरा था, इसलिए उसको होली स्टोन ऑफ काबा कहते हैं, पवित्र पत्थर है, जिसकी स्थापना मोहम्मद पैगंबर साहब ने स्वयं मक्का के अंदर किया। और तब से लेकर के ये मान्यता हुई कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, तब जीवन सफल हुआ। इसीलिए जो हज यात्रा पर जाते हैं, हज पर भी हर कोई नहीं जा सकता है, हज पर जाने के नियम बहुत कड़े हैं, लेकिन जो हज पर जाता है वहां जाने के बाद क्या करता है, अपने पापों का प्रायश्चित करता है। फिर एक पिल्लर है जिसको वो शैतान मानते हैं और उस शैतान को पत्थर मारते हैं और फिर ये पवित्र पत्थर को चूमते हैं, 7 बार उसकी परिक्रमा करते हैं। 7 बार परिक्रमा सिर्फ हिंदू धर्म में होती है और सिर्फ मक्का में होती है और कोई मस्जिद में नहीं होती है। और अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते हैं, जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता है, और वो लाइन है कि हे परवरदिगार, परमेश्वर को कहा, हे परवरदिगार नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो, कबूल हो, कबूल हो, तब उनका हज कबूल होता है। नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है, नूर माना तेज प्रकाश, ज्योति माना तेज प्रकाश, जिसको हमने ज्योतिर्लिंगम कहा, उन्होंने नूर कहा, बात एक ही है या अलग है, एक ही तो है। और आगे जाए क्रिश्चियन धर्म में कहा जाता है कि क्राइस्ट ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। इसलिए आज भी अगर वेटिकन चले जाओ, जो क्रिश्चियन धर्म वालों का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, वेटिकन सिटी के अंदर आपको किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी, लेकिन अखंड ज्योति स्वरूप लाइट का सिंबल मिलेगा, जिसको क्रिश्चियनों ने कहा गॉड इज लाइट। उन्होंने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा, बात एक ही है या अलग है, एक ही तो है। और आगे जाए गुरु नानक देव ने तो एक नूर और इतनी सुंदर तरीके से महिमा गाई है ना, एक ओमकार निराकार निर्वैर, इतना सुंदर एक एक शब्द है, इतना स्पष्ट किसी ने आज तक ईश्वर की महिमा नहीं गाई है। और इसीलिए दिखाते हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। और आगे जाए महात्मा बुद्ध ने कभी मूर्ति पूजा नहीं किया न कराई, बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा होती नहीं है, लेकिन वो भी ध्यान मुद्रा में है, किसका ध्यान कर रहा है, उनसे श्रेष्ठ कौन था जिसका ध्यान महात्मा बुद्ध ने भी किया। तो कहते चिंकुन शेकी, जापान में चले जाओ, आज भी 3 फुट की ऊंचाई पर 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, जो प्रकाश स्वरूप होता है, जिसको कहते हैं चिंकुन शिकी, जिसका ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है, जो शांति का दाता है, इसलिए वहां के लोग शांति प्रिय माने जाते हैं। उसका ध्यान किया, अखंड ज्योति स्वरूप। और आगे जाए जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, लेकिन ये 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में है, वो किसका ध्यान कर रहे हैं, उनसे श्रेष्ठ कौन था, तो कहते सिद्ध शिलापति। सिद्ध शिला यानी जो सर्वश्रेष्ठ है, और वो सर्वश्रेष्ठ कौन है तो कहा निराकार है। निराकार का ही ध्यान किया ये 24 तीर्थंकरों ने भी। और आगे जाए पारसी धर्म में तो कहा जाता पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर आए थे, और आज भी उनके मंदिर को कहा जाता है द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। तो सर्वधर्म मान्य कौन है? एक ही तो है, जिसको हिंदुओं ने ज्योति कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, निराकार कहा, है तो वो एक ही ना। नाम भले अलग अलग है, स्वरूप तो एक ही है। किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, मालिक कहा, साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक। साईं बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, हमेशा उसने इशारा किया सबका मालिक एक। तो फिर हम रास्ता भूले कहां से? जब उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम भगवान हैं, तो फिर हम उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? जो रास्ता उन्होंने बताया उसको हम माने ना। महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा मेरी पूजा करो, महावीर स्वामी ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं, तो हम रास्ता भूले कहां से? हम क्यों यहां एक एक को मंदिर बनाते हुए, उनको बिठाते हुए बस उसकी पूजा में लग गए और उससे दूर हो गए, मालिक से ही दूर हो गए, उस परमात्मा से ही दूर हो गए? शक्ति मिलेगी कहां से? स्रोत से या ये मीडिएटर से? कहां से मिलेगी? जिन्होंने भी उनसे शक्ति लिया, उन्होंने हमें भी कहा उसको याद करो, तो हम कहां अटक गए? तो सर्वधर्म मान्य एक ही है, एक ही है। क्लियर हो गया? कल को अगर आपका बच्चा या आपका पोता आपसे पूछे कि हिंदू धर्म में सारे भगवानों का हेड कौन है, तो आप बता सकेंगे या नहीं बता सकेंगे? बता सकेंगे? जो वास्तविकता है, जो सत्य है, वो सत्य को स्वीकार करना होता है, वही सर्वोच्च शक्ति है दूसरी कसौटी। इसलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु यानी जो स्वयं भू, जो स्वयं प्रकट हुआ है, जिसको उत्पन्न करने वाला कोई माता पिता नहीं है। इसलिए ये सब देवी देवताओं के माता पिता दिखाते हैं, लेकिन शिव स्वयं भू है, जो स्वयं प्रकट होता है, अवतरित होता है, जो गीता में उसने वायदा दिया यदा यदा ही धर्मस, मैं स्वयं इस संसार में अधर्म के समय पर आता हूं। और उसके लिए कोई माता पिता नहीं है, क्योंकि वो अवतरित होते हैं। तीसरा, वो चक्रों में नहीं आते, न जन्म न मृत्यु। अकाल मूरत महाकालेश्वर, जिसको काल कभी नहीं खा सकता है, शिव की महिमा है। जिसको कहा जाता है कि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सारे बीज के अंदर तो सारी क्षमता होती है, पोषण होता है, शक्ति होती है, बीज शक्तिशाली है। तो परमात्मा भी इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जो अजन्मा है, अकाल मूरत है, अव्यक्त है, जिसको व्यक्त स्वरूप नहीं है, जो अकर्ता भोक्ता है। इसलिए कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिलता कि शिव ने क्या कार्य किया। यही कहा जाता उसकी महिमा में, करण करावन हार है, खुद करता नहीं कराता है। किससे कराता है? तो तीन मूर्तियों से कराता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा से सृजन कराता है, विष्णु से पालना कराता है और शंकर से महाविनाश कराने वाला वो है, खुद करता नहीं है। इसीलिए उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगता है, कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि उसने थोड़ी किया है। तो ब्रह्मा सृजन करता है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की महिमा भी हर धर्म में है। उसके भी माता पिता नहीं दिखाते हैं, लेकिन उनको अवतरित उनके अवतार के रूप में दिखाया है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, इसलिए ब्रह्मा कहां से निकला? तो कहा विष्णु की नाभि कमल से। विष्णु कहां से आया? तो कहा ब्रह्मा की नाभि कमल से। अब दोनों एक दूसरे की नाभि कमल से कैसे निकलेंगे? कभी शास्त्र में ये बात सुनते हुए प्रश्न किया? नहीं, लीला है। किसी को भी अगर पूछेंगे तो कहेंगे ये तो ईश्वर की लीला है, बस जवाब मिल गया। लेकिन एक दूसरे की नाभि कमल से कैसे निकलेंगे? माना वन आफ्टर दी अदर, जिस तरह से मुर्गी पहले या अंडा पहले, कह नहीं सकते हैं। वन आफ्टर दी अदर, ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु उसकी पालना करते हैं, लेकिन ये त्रिदेव की उत्पत्ति कहां से हुई? इसलिए इनके अवतरण नहीं माना, जन की उत्पत्ति है। और इन तीनों की उत्पत्ति, उत्पत्ति और अवतरण में अंतर है। परमात्मा का अवतरण होता है, ये देवताओं की उत्पत्ति होती है। इनकी उत्पत्ति कहां से होती है? तो कहा ओम से। इसलिए कहते आदि शब्द ओम। ब्रह्मांड की रचना कहां से हुई? तो कहा ओम से हुई, क्योंकि ये उत्पन्न हुए हैं प्रकाश से। प्रकाश से ओम की ध्वनि जब उत्पन्न होती है, तो उस ओम की ध्वनि से ही ये तीनों देवताओं की प्रागट्य होता है, इनकी रचना होती है। इसलिए इनके भी माता पिता नहीं है, उनके बचपन की कोई कहानी नहीं है। न ब्रह्मा का बचपन है, न विष्णु का बचपन है, न शंकर का बचपन दिखाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट उत्पन्न हुए हैं कार्य अर्थ। परमात्मा को जब कार्य कराना था तो डायरेक्ट उत्पत्ति कर दिया। इसलिए ये ब्रह्मा विष्णु महेश का गायन भी हर धर्म में मिलेगा। हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश कहे तो इस्लाम धर्म में, कहा जिब्राइल मिकाइल इसराफिल। जिब्राइल माना जो सबक देने वाला, मिकाइल माना जो रोजी रोटी देना, पालना करने वाला, और इसराफिल माना जो कयामत लाने वाला। तो उसी को ही क्रिश्चियन धर्म में कहा द थ्री होली एंजल्स, जीओडी, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। उसी को ही गुरु नानक देव ने कहा एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। उसी को ही हर धर्म में आप देखेंगे तो ये तीन मूर्तियों का भी गायन है, हर धर्म के अंदर मिलेगा आपको। चाहे चाइना चले जाओ, जापान चले जाओ, वहां पर भी ये तीन देवताओं की प्रतिमा की पूजा, मंदिर मिलते हैं। चाइनीज लोग भी मानते हैं, तो जापानीज लोग भी मानते हैं, हर धर्म के लोग। तो जिस तरह परमात्मा को निराकार माना, निराकार स्वयं में कुछ करता नहीं है, तो ये तीन मूर्तियों के द्वारा कार्य कराया। तो जो सभी चक्रों से पर है, चौथा पर होते हुए भी सर्वज्ञ है। इसलिए शिवलिंग के ऊपर तीन लकीर लगाई जाती है, आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। उसकी पूजा करने के लिए तीन पत्र का बैल पत्र होता है, जो डंडी से जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश के रचयिता है। और ये तीन लकीर के बीच में एक आंख होती है, अर्थात जो मनुष्य आत्मा को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले हैं, त्रिनेत्री है। तो त्रिमूर्ति त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी वो एक ही परमात्मा है और सर्व गुणों में अनंत है, सर्वशक्तिमान है। सर्व गुण उसके जितने भी मंदिरों के नाम है, गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम है, तो गुणों में अनंत है। इतनी महिमा और किसी देवी देवताओं की हो ही नहीं सकती है जितनी परमात्मा की महिमा है। तो ये पांचों बातें, पांचों कसौटी पर एक ही खरा उतरता है जो सत्य है। तो ये था परमात्मा का दिव्य परिचय। जैसे किसी व्यक्ति का परिचय लेते हैं तो पांच बातें पूछते हैं, आपका नाम क्या है, फिर आपका आइडेंटिटी चाहिए, स्वरूप, तीसरा क्वालिफिकेशन, चौथा एड्रेस और पांचवा प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। ये पांच बातों में संपूर्ण परिचय आ जाता है। तो आज परमात्मा के परिचय में भी ये पांचों बातों को देखा, जिसका नाम है अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, गॉड, मालिक, जो भी कहो, हरि, जो भी कहो, परमात्मा, भगवान, वो एक ही है। उसकी आइडेंटिटी हर धर्म के अंदर निराकार ज्योति स्वरूप, प्रकाश, पुंज, नूर, लाइट, अखंड ज्योति स्वरूप है, ज्योतिर्लिंगम के रूप में जिसकी पूजा भारत में की। तीसरा उसके क्वालिफिकेशन, पांच बातें, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत, ये उसकी क्वालिफिकेशन है। उसका एड्रेस, पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, जो परमधाम का निवासी है, जिस परमधाम को अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम दिए गए, हाईएस्ट हेवनली अबोर्ड, किसी ने कहा सातवां आसमान, किसी ने कहा रूहानी दुनिया, रूहों की दुनिया है ना? तो वो धाम, सर्वश्रेष्ठ धाम जहां वो निवास करते हैं। और उसका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब वो अवतरित होकर के अधर्म का नाश, सत धर्म की पुनः स्थापना कराता है, खुद करता नहीं है, कराता है। तो करण करावन हार है। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, हाँ, मन एकाग्र होगा। आज तक हमारी शिकायत थी मन लगता नहीं है ईश्वर में, मन लगता नहीं, क्योंकि किसमें लगाए, अब तो स्पष्ट हो गया, अब तो लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। अच्छा, भगवान को याद करेंगे तो मांगना कुछ नहीं है, हे प्रभु शक्ति दो, ये दो, वो दो, अभी बाहर खड़े रहो सूर्य के सामने, सूर्य से मांगते नहीं हो कि सूर्य तेरी गर्माइश मुझे दे, खड़े रहो मिलेगी, उसके कांटेक्ट में आओ मिलेगी, अपने आप गर्माइश भर जाएगी, पसीना निकलने लगेगा, मांगने की जरूरत नहीं। समुद्र के पास खड़े रहकर समुद्र से मांगते नहीं कि तेरी शीतल हवा मुझे दे, खड़े रहो उसके कांटेक्ट में आओ मिलेगा। ऐसे मन और बुद्धि का कांटेक्ट ईश्वर के साथ जोड़ो, अपने आप शक्ति मिलनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, जिसके लिए मेरा ने कहा, मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, बस मन और बुद्धि एक की और हो, फिर देखो शक्ति मिलती है या नहीं मिलती है, मांगने की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ओम शांति। दो मिनट परमात्मा स्मृति में बैठेंगे।
शांति, ओम शांति। अच्छा, जिसको परमात्मा का परिचय मिल गया और जो बहुत खुश है वो खड़े हो जाए मुस्कुराते हुए, जो दुखी हो बैठे रहे बोले सब खुश है, तो जोरदार ताली बजा दीजिए। कितना अच्छा, परमात्मा का परिचय मिला, कितना खुशी है बोलिए, कितना खुशी है।
मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा
करते जीवन नैया सब
की करते भवसागर के पार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार परमात्मा